Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Thermaj Crop Guard Limited Q4 FY26 earnings conference call hosted by TIL Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode. There will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during this conference, please signal for an operator by pressing star and then zero on your touchtone telephone. Participants, please note, at the time of the Q&A, participants are requested to ask your questions in Hindi. Also note that this conference call is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sayam Pokharna from TIL Advisors. Thank you and over to you, sir.
Thank you, Farah. Welcome everyone and good afternoon. Thanks for taking out the time to join us today in the Q4 and FY26 earnings conference call of Thermaj Crop Guard Limited. The investor presentation and press release has already been uploaded on the stock exchange and on the company's website. To take us through today's results, we have with us from the management team, Mr. Ramesh Talavya, Chairman and Managing Director, Mr. Jaman Talavya, Full-Time Director, Mr. Vishal Domadia, Chief Executive Officer, and Mr. Vikas Agarwal, Chief Financial Officer. We will start with a brief opening remarks on the business performance for the quarter four and for the year from Mr. Talavya, followed by remarks on the financial performance by Mr. Agarwal, and then open the floor for Q&A session. I would like to remind you all that anything and everything said on this call that represents any outlook for the future and can be construed as a forward-looking statement must be viewed in conjunction with the risks and uncertainties that we face. These risks and uncertainties have been detailed in our annual report. With that said, I would now like to hand over the call to Ramesh, sir. Over to you, sir.
Good afternoon, everyone. And I thank you for joining us today for the Q4 and FY26 earnings conference call for our company. We are pleased to report that for the full year FY26, Thermaj recorded revenue of 1138 crores, reflecting a 20% year-on-year growth. For Q4 FY26, revenue came in at 234 crore, registering 11% year-on-year growth, even against relatively stronger Q4 FY25 base. At the profitability level, EBITDA for the full year stood at 101 crore, registering a growth of 34% year-on-year, while at net profit stood at 55 crore, up to 57% year-on-year. We have reported a strong overall financial performance, which has been delivered in a volatile operating and industry environment, including uneven monsoon and seasonal demand. Continued pressure on technical realizations through much of the year, and more recently, the emerging disruption from West Asia crisis and its impact on key raw material availability. Let us start with our formulation business. Within formulation, our domestic institutional segment delivered healthy growth of 15% year-on-year, FY26, supported by consistent performance across the year. Our branded formulation vertical, however, was muted, coming in 3% growth for the year. The kharif season in 25 started on robust note, and Q1 FY26 was in fact our strongest quarter for the branded formulation. However, the follow-through in Q2 FY26 was not as strong as we had anticipated. This was mainly on account of erratic and uneven nature of monsoon towards the latter part of Q2, particularly in late August and September, which resulted in a subdued agrochemical demand across the country. Some regions experienced excessive rainfall, creating an uneven demand environment. The rabi season that followed was also muted across the country, affected by lower than expected pest attack and elevated industry channel inventories that had built up from the stronger Q1. Together, this seasonal factor resulted in marginal growth for our branded formulation vertical over the years. We believe the underlying demand environment for our brand portfolio remains intact, and we expect the situations to normalize in FY27. In our active ingredient business, this was a landmark year for our technical plant. Our domestic active ingredient business grew 37% year-on-year for FY26, and we operated ahead of our own internal capacity utilization target through the year. The most significant milestone on this front is one we had set as a key strategic objective for FY26, which was achieving PBT level break-even at our technical plants. Through most of FY26, realizations demand under pressure and a meaningful recovery only began to emerge after February 26. The recent upticks we have seen since then had been largely driven by rising input costs across the board, reflecting the broader impact of West Asia situation on key raw materials. We are monitoring this closely. On the export front, we made strong comeback in FY26 after a challenging FY25 that was affected by external market disruption. Our focus at the technical plant remained on what is within our control, improving capacity utilization, improving our product mix towards the higher margin molecule, and progressive increased captive consumption within our formulation division. This factor, in our view, offers the most reliable path to improving the profitability of the active ingredient business. Independent of where the external pricing environment settles. On our expansion initiative, our new dedicated herbicide facility near our formulation site in Kerala, GIDC, Ahmedabad, is progressing in line with plan and is expected to be commissioned in quarter 3 FY27. This facility will support the long-term growth of herbicide portfolio and release capacity at the existing facility, which is particularly important during the next peak kharif season. We view this expansion as an investment in a category with strong structural demand growth. As I look at FY27, our growth outlook is positive with expected of 18% to 20% overall top line growth. Our internal focus for the coming year is clear. First, we will continue to scale up utilization at our technical plant, improve the product mix, and increase the captive consumption of active ingredient within our formulation division. This is our most important level for company level margin improvement going forward. Second, we will work to return our branded formulation vertical to stronger growth as the seasonal headwind from FY26 normalizes. And third, we will maintain and build on the momentum in our domestic institutional and export segment, which is expected to show good growth in current year. I am confident that Dharmaj is well positioned to deliver a strong FY27. For the financial highlights, I would now invite our CFO, Mr. Vikas Agarwal.
Thank you, Ramesh sir. Good afternoon, everyone. While most key points have already been addressed by Ramesh sir, I would like to highlight a few additional aspects for everyone's benefit. Before turning to the balance sheet, a few points on profitability and capital return ratio. Our full-year EBITDA margin stood at 9% compared to 8% in FY25, supported by higher scale, improved operating leverage, and move to PBT level break-even at the technical plant. Return on capital employed improved to 18% from 30% in the prior year. Return on equity improved to 12% from 9%. This ratio reflects both the stronger operating performance during the year and the gradual payback from the greenfield technical capacity we commissioned earlier. On the working capital front, the closing inventory stood at 2074 million, up significantly from 1385 million last year. This was mainly on account of the management taking a prudent call in March 2026 to secure additional raw material inventory to protect production continuity through the Kharif season, given the uncertainty around input availability and the pricing cost due to the West Asia crisis. Our cash conversion cycle extended to 87 days from 67 days in FY25. This was largely a function of additional inventory we built ahead of the Kharif season. We expect the cycle to ease as this inventory is consumed. On the asset side, net block stood at 3097 million, with fixed asset turn improving to 4 times from 3 times as utilization of the capacity created by our greenfield investment continue to improve. On leverage, we continue to maintain a healthy balance sheet. Long-term borrowing have been reduced to 51 million to 64 million, reflecting a disciplined debt repayment. Short-term working capital borrowing has increased to 809 million from 514 million, which is commensurate with the deliberate inventory build we undertook. Our gross debt to equity ratio stood at 0.29 times as of 31st March 2020, unchanged from last year, supported by net worth of 4491 million against 3944 million a year ago. Our debt servicing capacity remains robust, supported by an EBITDA of 1,005 million and a strong operating cash flow. With this, we can open the floor for the question and answer. Thank you.
Thank you, sir. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may enter star followed by one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may enter star and two. Participants are requested to please use only handsets while asking a question. Participants are also requested to please ask your questions in Hindi. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Praneet from SJ Investments. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you for the opportunity. First of all, I'd like to congratulate you guys for the impressive performance you're able to do in terms of profitability and revenue. But I wanted to understand in terms of budget formulation what's happening. Because we took over a year ago, our split was mostly towards B2C compared to B2B. Now, I think the splits have completely turned into institutional business. Hello, am I audible?
Hello. Yeah, please go a little less volume, actually. And you are not clear.
Is it better now, sir?
Yeah.
Hello. So, are you doing
basically... Can you ask the question in
English? So, I asked that, like, branded formulations, main segment, mein kya hua tha? Because abhi is saal, P2C ka contribution bahut kam ho chuka tha, like, the pehle 2 years se. So, main pooch raha tha, kya hua, matlab, in terms of split, because of this, kuch margin mein impact hoga, long term mein, matlab, what is the forecast management has regarding the B2B versus B2C split?
You are not clear yet, actually. Volume, your voice is getting break up, actually. We can't get you properly.
1 second, sir.
Hello? Hello? Can you repeat the question and go a little slow? So it will be... Hello?
Sir, am I audible now, sir?
Yes, Praneet, yes. You may proceed. Please ask your question in Hindi and please go a little slowly. Thank you.
Yes, sir. First, I like so my poocha tha, sir, in terms of B2C branded formulation specifically, is saal kya hua tha? I understand kuch headwinds tha market mein, but is saal se hum kaise grow karenge oh, branded formulation segment ko, aur इस बारे में और मैं सोच रहा था इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बिजनेस का स्प्लिट अभी काफी ज्यादा बी2बी तरफ हो गया था इस साल एक्सपोर्ट्स बढ़ा होकर और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस और एक्टिविटीनेस बढ़ा होकर मोस्टली अभी बी2बी पे स्प्लिट हो गया था बिजनेस मोस्टली मैं सोच रहा था इसमें स्प्लिट में ऐसे ही चाहे फोरकास्ट होगा मतलब और बी2सी वापस मेजोरिटी में आएगा 2-3 साल में
हाँ इसमें ऐसा था लास्ट ईयर मैंने बताया रीजन कि जो अगस्त सितंबर में बारिश हुआ था तो उसकी वजह से अपना ग्रोथ नहीं हो पाया था मतलब जो कंजप्शन होना था वो नहीं हो पाया था तो इस साल अगर रेगुलर मॉनसून रहा तो हमारा जो ग्रोथ है वो ऑन एन एवरेज 20-25% ब्रांड का वो मैनेज हो जाएगा और उसके लिए हमने पूरी तैयारी भी कर रखी है जैसे आपने देखा होगा रोहित शर्मा को जो ब्रांड एम्बेसडर लिया है और जो दो तीन स्टेट हम नहीं ऑपरेट कर रहे थे वो भी हमने चालू किया, जस्ट तमिलनाडु चालू किया, नॉर्थ इंडिया में हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो वो ब्रांड में हम पूरी तैयारी के साथ, अभी हमारा एक दो महीना जो स्टार्ट हुआ है वो एकदम पॉजिटिवली स्टार्ट हुआ है और वो ग्रोथ हम वापस आ सकते हैं, उसमें हमें डाउट नहीं।
बट इस साल में आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस देखा तो काफी कम हो गया था लाइक लास्ट ईयर से, इसका कारण क्या है?
वही मैंने बताया ना, अगस्त सितंबर जो पीक कंजप्शन पीरियड होता है फार्मर लेवल पे, तो वो कंजप्शन नहीं हुआ तो ब्रांड हमारा इतना ग्रो नहीं कर पाए, और वो ब्रांड वो दो महीने में कंजप्शन नहीं हुआ तो आगे रबी सीजन में भी इतना पेस्ट इफेक्ट भी नहीं था, और जो इन्वेंट्री था वो क्लियर हुआ मतलब लिक्विडेट हुआ, तो उसकी वजह से अपना ग्रोथ नहीं हो पाया।
अच्छा, समझ लिया। और हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में थोड़ा स्प्लिट चेंज कर रहा था, स्पेंड लास्ट ईयर से था, लास्ट ईयर के रेंज में है, इस साल थोड़ा एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में शिफ्ट कर रहा था, उसका स्ट्रेटजी क्या है?
उसका स्ट्रेटजी हमने ये बनाया है कि जो मार्केटिंग जो टूल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट किया, जैसे हम फार्मर मीटिंग फील्ड डे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो ये रोहित शर्मा को लेके हमने ऑल ओवर इंडिया में विजिबिलिटी कैसे इम्प्रूव हो उस तरीके की एक्टिविटी हमने मार्च और मंथ स्टार्ट कर दी। और अभी जो हमारा जो फर्स्ट स्टेज चलता है सीड ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट और हर्बिसाइड सेगमेंट, तो उसमें हम ऑन गोइंग ऑन पाथ पे है, जो हमने ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाया है तो उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे।
और इस साल से अभी आई थिंक इस साल 75 था, लास्ट ईयर भी कुछ 75 के आसपास ही था ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट मिला के, इससे बढ़ना चाहते हैं हम रेवेन्यूज के साथ साथ, और क्या इसका स्ट्रेटजी है कल नेक्स्ट ईयर और दो साल के बाद?
नेक्स्ट ईयर हमने बताया ना 18-20% हम ऑल ओवर ग्रोथ करेंगे उसमें।
मार्केटिंग स्पेंड में पूछ रहा था, टॉप लाइन समझ लिया, टारगेट है 20% का, बट इन टर्म्स ऑफ स्पेंड उसको रीच करने के लिए कैसे स्पेंड करेंगे?
B2C में हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हम 3% के अराउंड वो मार्केट में हम स्पेंड करते हैं अपना जो टोटल बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग।
अच्छा, और नेक्स्ट अभी आज बोल रहा था हम क्लोज है पीबीटी प्रॉफिटेबिलिटी और टेक्निकल प्लांट के लिए, इससे हम प्रॉफिटेबिलिटी को पीक अभी यूटिलाइजेशन कैपेसिटीजेशन क्या है अभी इस साल और नेक्स्ट ईयर किस कैपेसिटीजेशन पे हम पीक एबिटा मार्जिन पहुंचेंगे टेक्निकल्स के लिए?
हमारा टेक्निकल प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइज हमारा 65-70% अराउंड है, अराउंड 70% के अराउंड, और वो नेक्स्ट ईयर हम और इम्प्रूव करेंगे उसमें प्रोडक्ट मिक्स ऐड करके।
अच्छा, उसका अभी कुछ पीक यूटिलाइजेशन क्या होगा और उसका पीक यूटिलाइजेशन पर हमारा इबिटा मार्जिन कैसे हो सकता है?
इबिटा मार्जिन भी ऑन एन एवरेज एवरी ईयर हम इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, उसमें 0.5-0.75 रेंज में इम्प्रूवमेंट होगा आने वाले 2-3 साल।
अभी का मार्जिन क्या है उस प्लांट का?
अभी इबिटा मार्जिन हमारा 5% अराउंड है, 5% अराउंड टेक्निकल्स का।
अच्छा, वो बढ़कर 10% तक हो सकते हैं 5 साल में, मतलब उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा?
10% तक दोनों में हो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, 4-5 साल का टाइम होगा तभी 10% तक हम पहुंच पाएंगे ओनली टेक्निकल्स।
अच्छा, सब अभी ब्रांडेड
एवरी ईयर हम अराउंड 65% इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे।
अच्छा, समझ लिया। और नेक्स्ट साल हमारा हर्बिसाइड प्लांट की ऑपरेशन हो सकते हैं बता रहे थे, उसका अभी कितना कैपेक्स हुआ था और इसमें मतलब यूटिलाइजेशन ब्रेक इवन को कितना अभी टाइमलाइन क्या है उसका ब्रेक इवन चलने
का? हर्बिसाइड का हम यूनिट स्टार्ट किया है उसका मोस्टली सिविल वर्क मतलब एंड पे है, फिनिशिंग लेवल पे है, और मशीनरी का हम अभी ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन वगैरह सब होने में अभी 4-5 महीना जाएगा। तो ये जो यूटिलाइजेशन है हमें थोड़ा रबी सीजन में मिल सकता है, लेकिन नेक्स्ट जो खरीफ सीजन आएगी उससे पहले हम फरवरी मार्च में उसके लिए पूरा 100% रेडी करके उसमें हम पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
सो अभी नेक्स्ट सीजन तक हम फुली ऑपरेशनल होने के लिए प्लान कर गए वो हर्बिसाइड प्लांट।
हाँ,
उसका अभी कैपेक्स कितना हुआ था? पहले बोला था कुछ रेंज में, अभी थोड़ा वॉर के समय पे थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया है ना, इससे कुछ चेंज हुआ था कैपेक्स स्पेंड और प्रीवियस गाइडेड कैपेसिटी था।
कैपेक्स में तो हमने तो प्लानिंग किया था उसी हिसाब से।
अच्छा, और इस साल में कितना हो सकता है उस प्लांट के लिए कैपेक्स और एडिशनल?
ये करंट ईयर में हमारा 50 करोड़ अराउंड कैपेक्स होगा, यूनिट थर्ड और यूनिट टू में भी स्मॉल स्मॉल जो होता है उसमें दोनों मिला के।
अच्छा, और जी हम जी अभी बी टू बी और बी टू की सी का स्प्लिट कैसे नेक्स्ट टू इयर्स में? अभी हर्बिसाइड प्लांट भी चालू कर रहे तो उसको भी स्पिकल काफी जल्दी हो जाएगा, बी टू बी स्प्लिट का और बढ़ेगा ना, तो ऐसे अब क्या स्प्लिट सोचा? पहले था 2/3 मतलब बी टू सी और बी टू बी 1/3 था, अभी रिवर्स हो गया वो प्रोपोर्शन। आने वाले समय में कैसे होगा ये वाला बी टू बी और बी टू सी में स्प्लिट?
तो डेफिनेटली वो बी टू बी और बी टू सी दोनों जो फॉर्मुलेशन है वो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि अभी हम कई चीजें ऐसी है कि जो अभी पीक सीजन होता है उसमें हमारे पास जो स्पेस चाहिए वो नहीं होता है, तो हम आउटसाइड पे वो टॉलिंग करवाना पड़ता है, वो एक बंद हो जाएगा, अपना इनहाउस हो जाएगा। और उससे हम वेल प्लान कर सकते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छी तरह से कैच कर सकें।
बी टू बी मार्जिन में क्या है अभी और बी टू सी का क्या है? आने वाले समय में कैसे चेंज हो सकते हैं एबिटा मार्जिन दोनों डिविजन्स का, दोनों सेगमेंट्स का?
सर, फर्स्ट थिंग इज दैट बी टू सी वॉज नेवर, इट वॉज बिफोर देन वी पार्ट ऑफ टेक्निकल प्लांट, बी टू फॉर्मुलेशन वॉज ओनली द थिंग। नाउ वेन वी स्टार्ट टेक्निकल प्लांट, टेक्निकल production has come. That is why we see that B2C overall is going, percentage wise is going down. But overall if you see, so it was at par only. So last year we have a 3% growth in B2C. Now overall margin side if you see, so our B2B is around 15-20% is the GP margin. And in brand we have 35-40% GP margin. For technicals, we have 20-25% margin. This is product to product.
So, EBITDA wise, B2C will be 25 and the
technical plan is GP margin. What I have told right now is a GP margin.
Retail margin, so basically gross profit, is it? The 25%?
Yeah, GP margin. Again, I tell you, B2B, we are having 15-20%. In export also, we have same 15-20%. In brand, we have 35-40%, and in technical, we have 20-25% GP margin.
Understood, sir. The only concern I have is going forward, let's say if the technical plants, let's say the B2B business starts scaling up, the overall margin compression might happen from at least past high levels. I understand absolute might grow, but I was just wondering in terms of, let's say the overall margin, the herbicide plant also starting up, where can we expect the long-term margins to stay at?
Sir, herbicide we already have in our existing plant, it was already there. Only thing is that there is a space issue. So what we are doing, we are having a herbicide formulation plant near our existing plant. So overall if you see, the margin will definitely going to improve. Right now we are having a 8.73 margin, EBITDA margin, that will be improved to double digit in next 2 years.
Understood, sir. The reason I was specifically asking, because of B2B side has a little lower margin compared to a B2C side, right? At the end of the day, absolute. So the reason I was asking was specifically herbicide is, as that particular plant scales up, revenue will go faster from that division, right? So as a result, overall consolidated level may thoda margin kam ho sakte previous high se, aur main wo pooch raha tha. Bas.
Okay. Overall, yes. Technical is totally out. I agree with you.
So let's say, sir, right now in the next 2 years, probably herbicide plant will set up and there'll be some operational, let's say break-in will take a year. So when do you expect the herbicide plant to become completely profit, let's say profitable? And let's say once it's profitable, do you think the margins
can change? Yes. Herbicide, I'm telling you, herbicide is already, we are having a herbicide plant, facility in our
new
existing
plant. So when I mentioned the herbicide plant,
We are shifting our existing facility to there. So there will be some margin. There is a space issue, so we are just shifting. It is not that we are not in the herbicide. We are doing herbicide formulation right now also.
Sir, I think if I should ask, I understand we're doing already herbicide and we're just shifting it to a bigger plant for better utilization and better capacity, right? I was just wondering, once we shift it, will it take some time? it will take some time for us to get to profitability, right? Or will it not?
No, no, it will not take any time. Because we have all the, it will, because existing plant will already have that facility, and we will do it in a better way only. So there will be no impact on our marginal or anything. It will be that as such only.
Okay, sir. And let's say in next 3 years...
I'm sorry to interrupt, Praneet. Could you
yes,
return
sir,
to the question?
You.
Yeah, thank you. The next question is from the line of Rajat Sethia from iThought PMS. Please go ahead.
Hi. Meri awaaz aa rahi hai?
Yes, sir. Please continue.
Thanks. Hi, sir. Congratulations on good set of numbers. Sir, ek sawaal ye tha ki अगर आप एआई बिजनेस के बारे में थोड़ा नंबर शेयर करें कि इस क्वार्टर में और फुल ईयर में ग्रॉस मार्जिन क्या थे और एबिटा लेवल पे क्या नंबर्स थे
टेक्निकल प्लान
हाँ जी हाँ जी
या तो लास्ट ईयर वी हैव अ जीपी मार्जिन ऑफ 19% इन करंट ईयर वी हैव अ जीपी मार्जिन ऑफ 22% एंड एबिटा इज अराउंड 5% विच वॉज नेगेटिव लास्ट ईयर
अच्छा इस साल 5% बनाया बेटा
हाँ 5% बेटा
और वो आई थिंक लास्ट ईयर वो माइनस में था राइट माइनस
4%
सर जो फॉर्मुलेशन अगर हमने 5% इसमें बनाया तो फॉर्मुलेशन में हमारा मार्जिन फुल ईयर बेसिस पे गिरा है क्या
नहीं नहीं वो नहीं गिरा मेरा टेक्निकल का व्हाट एवर द कंट्रीब्यूशन इज देयर इट इज ओनली 25% ऑफ टोटल सेल सो वी हैव टू कंसीडर दैट सो माय पीबीटी लेवल आई एम एट ब्रेक इवन इन आवर टेक्निकल
पीबीटी पे ब्रेक इवन आ गया क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पीबीटी लेवल पे जो हमारी कॉस्ट मतलब एबिटा के नीचे जो कॉस्ट बढ़ी थी वो डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट थी लगभग 25 करोड़ बढ़ी थी टेक्निकल
अराउंड
22 करोड़ के आसपास अच्छा 22 के आसपास तो अगर हमने 5% बनाया तो मतलब 14-15 करोड़ के करीब एबिटा बनाया और नीचे 22 करोड़ का कॉस्ट बढ़ी होगी राइट
या तो पीबीटी लेवल पर ब्रेक इवन हो गया
हाँ मतलब 5-7 करोड़ का लॉस 7 करोड़ का लॉस आ रहा है ना पीबीटी लेवल पे मतलब 15 करोड़ का एबिटा और 22 करोड़ का
नहीं
पीबीटी वो कॉस्ट है
आप लास्ट ईयर का पूछ रहे हो कि करंट ईयर का
करंट ईयर
नहीं करंट ईयर पे पीबीटी पे पॉजिटिव है ईबीटा मेरा जो है वो 22% के आसपास रहेगा 22-25 के बीच में तो मेरा ईबीटी लेवल पे मैं ब्रेक इवन किया
अच्छा ईबीटा 22 करोड़ बना है टेक्निकल में ओके सर मे बी बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं एक चीज ये जाननी थी कि टेक्निकल लेवल में टेक्निकल प्लांट में हम लोग इस क्वार्टर में 10% से ग्रोथ आई है और आई थिंक काफी स्केल आ चुका ऑलरेडी विद इन 2 इयर्स तो शायद इस वजह से अभी हम 10% से ग्रो करें पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो काफी अच्छी ग्रोथ होती थी तो अभी गोइंग फॉरवर्ड टेक्निकल में हम 8-10% से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी हम 15-20% से ग्रो कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड
गोइंग फॉरवर्ड मतलब दिस टाइम हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% रहा और 65-70% रहा और नेक्स्ट ईयर हमारा ये 75% के आसपास रहे और हमारा जो ग्रोथ रहेगा वो जो ओवरऑल जो हमने बोला ग्रोथ वो 15-20% के बीच में रहेगा 18-20% के बीच में सभी वर्टिकल्स
ओके और जैसे हमारी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18-20% तो जो हमारे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं या फिर अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी रेट से ग्रो करेंगे
वेरिएबल कॉस्ट ग्रो करेगा सर फिक्स कॉस्ट तो ऑलमोस्ट इट विल बी द सेम
एम्प्लॉय को आप कैसे देखते हो मतलब वो तो सेमी वेरिएबल होता है तो वो किस रेट से आपको लगता है ग्रो करेगा
वो दैट विल बी ग्रो अराउंड 5-8% के बीच में ग्रो करेगा 5%
ओके और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं सर जैसे जो इस साल 54 करोड़ के करीब थे लास्ट ईयर 44 थे तो लगभग 20% का जंप आया था इस साल तो नेक्स्ट ईयर उसको कैसे देखते हो
नेक्स्ट ईयर इट विल बी वेरिएबली वो इंक्रीज होगा बट I don't think there will be much increase in that.
Okay. Okay. All right. Theek hai, sir. Thank you so much.
Thank you very much.
Thank you. The next question is from the line of Sanjay Lada from Bastion Research. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you for the opportunity. Congratulations, sir. Itne tough time mein apne achha quarter push kiya. Sir, mera sawal ye tha ki given the uncertainty, due to geopolitical situation, and uski wajah se humne ye dekha ki raw material prices bhi increase ho rahe hain, jo ki reflecting into finished goods ke prices bhi bahut tezi se increase ho rahe hain. और ये सारी सिचुएशन में हाउ वी आर सीइंग डिमांड सिनेरियो राइट नाउ गोइंग फॉरवर्ड एंड वी आर हियरिंग दैट सर कि बिकॉज थोड़ा एल नीनो का इंपैक्ट आ रहा है ड्यू टू विच ये रेनफॉल थोड़ी फर्दर डिले हो सकती है यहाँ से तो हम H1 FY 2027 में मतलब ये डिमांड सिनेरियो कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं अगर आपके कुछ थॉट्स हो तो ये तरफ से.
जैसे आपने बताया कि जो रॉ मटेरियल प्राइस अप रहेगा अनसर्टेनिटी रहेगा तो उसका तो हमने मार्च से प्री प्लान कर रखा है उसमें अपने एंड पे कोई अभी तक कोई इश्यू नहीं है और ना तो आएगा. और दूसरा जो आप बता रहे हो अलनीनो की इफेक्ट तो अलनीनो में 90-92% या 95% तक बारिश मतलब रेनफॉल बता रहे हैं तो अगर रेनफॉल इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा और टाइमली इंटरवल पे आया तो उसका कोई इफेक्ट इस सीजन पे नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि मॉनसून बहुत ही अच्छा था पर एक्सेस रेनफॉल की वजह से और कंटिन्यूस बारिश की वजह से अपना खरीफ सीजन थोड़ा डिस्टर्ब रहा लास्ट अगस्त सितंबर का.
करेक्ट.
उधर अलनीनो की इफेक्ट ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आ रही है पहले भी आ चुकी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर मॉनसून मतलब बारिश डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरवल सही रहता है तो अपने ये बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अगर ज्यादा कोई ड्राई स्पेल रहा तो दिक्कत आ सकता है बाकी तो कोई अपने को एज सच कोई प्रॉब्लम आने की संभावना कम है क्योंकि आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो सिचुएशन था उसमें भी अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मतलब वाटर लेवल और रिजर्वायर लेवल और जो ट्यूबवेल इरिगेशन है आप अभी देखो तो मोस्टली आप गुजरात देखो मध्य प्रदेश देखो राजस्थान कई पार्ट देखो तो ऑलमोस्ट जो खरीफ का सोइंग है वो भी स्टार्ट हो गया है और 10-20% सोइंग फिनिश भी हो गया है तो वाटर लेवल अभी भी अच्छा है. अगर बारिश 2-4% कम आ जाए तो इससे कोई सीजन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता.
सर मैं पूछ इसलिए रहा था कि लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर अपना Q1 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था एंड Q2 का क्वार्टर थोड़ा सा वीक हो गया था बिकॉज बारिश अपना एक्सटेंडेड रेनफॉल की वजह से तो ये Q1 और मतलब ऑफकोर्स सर आई अंडरस्टैंड कि कैसा हो जाएगा वो तो अपने को अभी तक मतलब जस्ट जजमेंट आपकी ऐसा होगा कि नहीं होगा वो टाइम ही बताएगा बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम आस्किंग कि Q1 अपने को वैसा ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ बिकॉज हम 2-3 महीने ऑलरेडी उसमें निकल चुके हैं Q1 में तो अपने को Q1 में कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया है सर मतलब कि आ रहा है थोड़ा कि ये थोड़ा सा
अभी तो
सुन रहे हैं
अभी तक तो Q1 में हमें कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है. अब बारिश पे डिपेंड रहता है अगर अर्ली बारिश हो गया तो अच्छा हो जाएगा अगर बारिश लेट हुआ तो अब जो अप्रैल और मई 2 मंथ गया है वो अभी बिना बारिश का मतलब जो प्लानिंग था जो परचेज करते हैं सेल्स करते हैं वो प्रिपरेशन के हिसाब से होता है बराबर. और अब जून महीने का जो सेल्स है वो बारिश को देख के होता है. अगर लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 15 जून से पहले 10 जून अराउंड बारिश स्टार्ट हो गया था तो वो एकदम पॉजिटिव माहौल था और अपना जो मेनली ब्रांड में प्लेसमेंट फिर कनेक्टेड होता सीधा B2B का सेल्स तो उस तरीके से वो जून महीने का अपना सेल्स हाई लेवल पे था. अगर अब बारिश लास्ट ईयर की तरह इस साल भी जून में बारिश अर्ली आ जाता है तो उस हिसाब से मैनेज होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर बारिश लेट होता है तो भी थोड़ा इफेक्ट आ सकता है।
करेक्ट सर, अभी उसमें मेरे को आपसे ये समझना था कि जैसे आपने बताया कि आप Q1 की इन्वेंटरी तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इसका रीजन ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जियोपॉलिटिकली बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब चल रही है, राइट सर? तो पहले Q1 मतलब पहले साल में अपने को कोई दिक्कत नहीं थी रॉ मटेरियल साइड पे या कोई वो साइड पे, अभी ये टाइम पे बिकॉज प्राइजेज अप एंड डाउन बहुत अनसर्टन सिनेरियो है, एंड अपने Q1 के लिए तो प्रिपेयर है, बट जो ये एक्सटेंडेड जो ये बारिश या पॉजिटिव सीजन जो ये आ जाएगा गोइंग फॉरवर्ड अगर एक्सपेक्ट करते आ जाएगा, तो अपना रॉ मटेरियल प्राइस पे जो इम्पैक्ट आएगा वो अपने को प्रॉब्लम नहीं देगा, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना सर? मैं मतलब ऐसा मान के चले तो
इसमें सर जी रॉ मटेरियल का प्राइस जो भी बढ़ता है, सपोज अभी ये एक क्रूड बेस पे जो भी प्रोडक्ट है, सपोज कोई पैकिंग मटेरियल होता है बोटल्स वगैरह सोलवेंट वगैरह, उसमें इम्पैक्ट आता है, तो वो तो टाइम टू टाइम पास ऑन होता है ना, वो तो हो ही नहीं पाता क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो वो तो नीचे पास ऑन होता ही है, और पास्ट में भी ऐसा ही होता है, कहीं एकाध दो परसेंट ऐसा होता है कि जो आप पास ऑन नहीं कर सकते हो, बाकी तो ऑलमोस्ट जो कॉस्ट बढ़ता है, हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाया है कि हर मंथ जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो उसी बेच भी हम नीचे फिनिश मटेरियल का प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, और कई बार तो हमें वीकली भी डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ये रॉ मटेरियल बढ़ गया है, जैसे लास्ट मार्च में वोलेटिलिटी था तो उसी बेच पे हमने डिसीजन लेके वो तो प्राइस मेंटेन किया था।
ठीक है सर, दूसरा मुझे ये पूछना था कि अपना Q4 में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशन काफी अच्छा किया है, अब मेरे को ये था कि अब गोइंग फॉरवर्ड भी बिकॉज अपने जियोपॉलिटिकली जो चल रहा है उसकी वजह से क्या अपने को एक्सपोर्ट अभी भी डिसेंडिंग चल रहा है कि एक्सपोर्ट में आप थोड़ा सा हिंड्रेंस देख रहे हो कि कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं, आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट अपना इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशन तो बेहतर ही कर रहा है सर, मतलब ऐसा कुछ फीडबैक आप?
एक्सपोर्ट में भी हमने लास्ट ईयर इम्प्रूव हुआ है ना, हमारा बिजनेस जो बिफोर लास्ट ईयर था, मतलब जो करंट ईयर से बिफोर, उससे हमने काफी इम्प्रूव किया है, और अभी हमने दो तीन कंट्रीज में अपना रजिस्ट्रेशन भी आ गया है, तो वहां भी इस बार हमें एक्सपोर्ट में भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा।
एंड ये सर अपने ये साल भी कंटिन्यू रख रहे जी, एक्सपोर्ट अपने लिए बेटर ही करेगा ये साल भी?
हाँ हाँ,
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन।
थैंक यू।
Next question is from the line of Disha from Sapphire Capital. Please go ahead.
Hello.
Haji.
Am I audible? Yeah. Thank you so much, sir. Yeah. So, sir, my first question was again in the export segment. You mentioned that we've received 2-3 countries from a registration mila. So, iski, or other than that, what will be the other growth driver? Yahan pe aur growth aap kis hisab se dekh rahe ho? And what are the margins kaise hai apne export mein?
एक्सपोर्ट में मार्जिन तो ये जो अपना डोमेस्टिक में इंस्टीट्यूशनल सेल्स होता है उसके पैरेलल ही रहता है, अपना जो जीपी मार्जिन है 15-20% रहता है, और जो इबिटा मार्जिन है वो 10-12% रहता है, और उसमें कंटिन्यूस हमारा प्रोसेस रहता है कि जहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू रहता है काफी कंट्री में, तो जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन आने लगता है वहाँ बिजनेस स्टार्ट होता है, नया कस्टमर एड होता है, नए कंट्रीज में अपने को अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ हमारी एंट्री होती है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे बिफोर लास्ट ईयर हमने इस बार काफी इम्प्रूवमेंट किया है, तो इस बार भी हमारा इम्प्रूवमेंट एक्सपोर्ट में अच्छा ही होगा, हमने नई टीम भी बनाया है।
ये तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अपने को ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होगा
ना इसमें मैडम, इतना कोई एक्सपोर्ट में कहीं गल्फ कंट्रीज में शिपमेंट में इश्यू होता है, बाकी तो ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि भाई शिपमेंट की वजह से एक्सपोर्ट ना हो ऐसा, जैसे हमारा बिजनेस कहीं ईरान वगैरह में होता था, इराक वगैरह में, वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है भाई मटेरियल नहीं जा रहा, और वहाँ इतना अपना वो था भी नहीं बिजनेस, बाकी तो सब जगह पे रूटीन ही चल रहा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है।
अच्छा ओके ठीक है। एंड सर ये अपने टेक्निकल बिजनेस में सो यू मेंशन अभी अपन ने 5% एबिटा करा, तो एट ऑप्टिमल लेवल अपन कितना एबिटा कर सकते हैं, व्हेन डू वी रीच दैट लेवल?
अपना जो ऑप्टिमम लेवल है 8-10% एबिटा आ सकता
है, 8-10%, सो दिस विल रीच अभी FY27 में ही हो जाएगा अपना?
नहीं, आने दो से तीन साल लगेगा उसमें.
तो सर हाउ डू यू सी द ओवरऑल एबिटा मार्जिन कैसे देखे हैं फॉर FY27?
FY27 में एबिटा मार्जिन हमारा जो 9% है अभी करंट, उसमें 0.5 to 0.75% इंप्रूवमेंट होगा.
ओके ओके. एंड सर ये अपना FY27 में केपेक्स कितना रहेगा?
केपेक्स हमारा 50 करोड़ अराउंड रहेगा.
ओके ओके ओके. That is it from us. Thank you.
Okay, thank you.
Thank you. Participants with questions may enter star followed by one. The next question is a follow-up from Praneet SJ Investments. Please go ahead. Please put the call on hold. We'll move on to the next question. It's from the line of Nitin Prajapati from Suyog Management. Please go ahead.
Hello.
Yes, sir. Please proceed.
Congratulations to all you that have seen. सर एक मेरे को एक मीडिया पे एक आया था न्यूज ऐसा कि जो पेराको डाइक्लोरोबाइड हर्बिसाइड है उसका कुछ बैन वगैरह कुछ फेस करना पड़ता है, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर थर्मस पे?
पैराकोट का आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें वहाँ का स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने बैन रखा है, तो उससे कोई अपने को कोई इतना बड़ा वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट नहीं पड़ता. okay. और उसकी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट चलता है. ऐसा नहीं है कि पैराकोट बंद हो जाएगा तो बिजनेस लॉस हो जाएगा, उसका अल्टरनेट बहुत है, तो उसकी जगह पे दूसरी प्रोडक्ट यूज होता है.
okay. वो भी है, कुछ मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा
ना, कोई 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ता.
Okay, thank you. Thank you very much.
Thank you. Participants, if you have any questions, you may enter star followed by one on your handset. To ask a question, please enter star and one. We have a question from the line of Yogansh Jaiswani, Mittal Analytics. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you for the opportunity. I hope audible.
Yes.
Yeah. Sir, सबसे पहले तो congratulations आपने difficult time में अच्छा result दिया. Sir, मैं थोड़ा सा late join किया था, तो sorry अगर ये question पहले हो चुका है. But जैसे अपना जो branded formulations या overall domestic institution formulations business है, इसमें इंस्टीट्यूशनल तो हैज ग्रोन बट ब्रांडेड में हमारा ग्रोथ थोड़ा कम रहा था. आई थिंक अपना सीजन वीक था Q2 के बाद से जो आपने गाइड किया था, तो बट गोइंग फॉरवर्ड इस साल में आपको क्या लगता है अगले एक दो साल हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, और उस ग्रोथ को लाने के लिए हमारे क्या एफर्ट्स होंगे? क्या वो नए स्टेट से आएगा, या जो हमने कुछ नए स्टेट अभी चालू किए थे वहां पे कुछ और स्टेबिलिटी और स्केल अप आएगा? थोड़ा सा इस चीज पर अगर आप समझा सके सर.
हमारा जो ब्रांडेड बिजनेस है, जैसे अर्ली हमने बताया कि 20 से 25% में आगे ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और नया स्टेट में देखे लास्ट ईयर का जो है ना वो एक्सेप्शनल कंडीशन है कि 3% जो ग्रोथ आया उसका मेजर रीजन आप स्टेट वाइज बाइफर्केशन देखेंगे तो जहां पे हम लोग वेस्ट में स्ट्रांग थे गुजरात MP महाराष्ट्र एंड राजस्थान, तो वहां से शॉर्टफॉल है. बाकी जहां पे हम लोगों ने नया स्टेट किया है वो ऑन ग्रोथ पे है और ऑन ट्रैक है. अगर मैं आपको विथ डेटा बात करूं तो लास्ट ईयर जो हमने 4 स्टेट ओपन किए थे उसका कंट्रीब्यूशन सेल्स में 7% था, जो अभी जो है वो 14%, तो वहां पे ऑन ट्रैक है और डेफिनेटली हम लोग वहां पे अच्छा करेंगे. दूसरा स्ट्रेटेजी जो है नए स्टेट में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को भी लिया है और उसको भी यूटिलाइज मार्केटिंग कैंपेन में पूरा कर रहे हैं.
आई थिंक ये रोहित शर्मा जी वाला जब आपने अपडेट डाला था तो वो देखे बहुत अच्छा लगा कि कंपनी ने बहुत अच्छा एंगेजमेंट किया, पॉपुलर अपील वाले ब्रांड एम्बेसडर को देखते हैं. So good job to the entire team for this. Sir, ek last question, फिर मैं question के में वापस चला जाऊंगा. तो जैसे भी सर आप कह रहे थे कि 50 करोड़ का हम capex plan कर रहे हैं, ये broadly क्या करेंगे और क्या timeline होगा इसके execution का?
इसमें सर जी ये साल में वो हो जाएगा करंट ईयर में.
अच्छा,
नहीं उसके उसका हमारा जो स्ट्रेटेजी ऐसा है कि हर्बिसाइड का पूरा लोकेशन हम अलग कर रहे हैं. अभी जो हमारे पास है एक ही लोकेशन पे अलग अलग यूनिट है, तो वहाँ हमें स्पेस का इश्यू आ रहा है, सेल मूवमेंट में काफी प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए हमने ये लोकेशन पूरा हर्बिसाइड का अलग चूज किया है कि वहाँ जो हर्बिसाइड वाला एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो सब हम अलग लोकेशन पे शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा कैपेसिटी भी उसका इम्प्रूवमेंट होगा. और जो एग्जिस्टिंग हम अभी हर्बिसाइड बना रहे हैं वो पूरा यूनिट हम अपना इंसेक्टिसाइड और फंजिसाइड में कन्वर्ट कर लेंगे. और क्योंकि हमारा जो देखो तो फॉर्मुलेशन का बिजनेस ही मेजर सेगमेंट है, अराउंड 75% समथिंग, और वहाँ उससे ऊपर हमें अगर 20% ग्रोथ लाना है तो वहाँ हमें स्पेस भी चाहिए और उसके लिए थोड़ा फैसिलिटी भी कैपेसिटी भी इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो ये डिसीजन इसीलिए लिया है कि तो हमारा ऑल ओवर जो मूवमेंट है वो प्रॉपर वे में हो जाए. तो इसका जो हमें बेनिफिट है वो नेक्स्ट कमिंग खरीफ सीजन में लगेगा, क्योंकि फरवरी से ये बिजनेस मतलब फरवरी से उसका प्रिपेरेशन प्रोडक्शन पैकिंग वो सब स्टार्ट हो जाता है हर्बिसाइड का, जो फर्स्ट क्वार्टर में चाहिए. तो इसके लिए ये थर्ड क्वार्टर एंड तक हमारा टोटल प्लांट रेडी हो जाएगा और हम उसको कॉमर्शलाइज करेंगे.
तो सर जैसे कि ये 50 करोड़ का अपना स्पेंड जाएगा, ये अपने को ग्रोथ में हेल्प करेगा अगले 1-1.5 साल के लिए कि उसके आगे की भी ग्रोथ इसी केपेक्स के थ्रू सर्विस हो जाएगी? मतलब मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इससे काफी कुछ तो हमारा वो डी बॉटलनेक होगा, थोड़ा ईज आउट हो जाएगा आपके पास फैसिलिटी पे, बट आपकी बात से ये नहीं समझ आया अभी कि ये 2-3 साल के लिए अपने को रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल दे देगा कि उसके फुल टाइम बाद फिर से 20-50 करोड़ का कुछ कैपेक्स करना पड़ेगा?
नहीं नहीं, हम जो ग्रोथ ला रहे हैं मतलब एवरी ईयर, लास्ट ईयर हमने 20% लाया, अभी 18-20% ला रहे, तो उसके लिए ये जरूरी है.
नहीं रमेश जी, मेरा पूछने का मतलब ये कि जैसे ये 50 करोड़ लगाएंगे तो इसके लिए अगले 1-1.5 साल की ही ग्रोथ का
साल तक बेनिफिट रहेगा अपना जो ग्रोथ पाथ है ना उसके लिए.
गॉट इट सर. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट आपकी पूरी टीम को.
थैंक यू.
पार्टिसिपेंट्स विद क्वेश्चंस में एंटर स्टार एंड वन ऑन योर हैंडसेट. The next question is from the line of Rohit from iThought PMS. Please go ahead.
Sir, मेरी आवाज आ रही है?
Yes, आ रहा.
Sir, good afternoon, sir, और very good results, sir. Congratulations. Sir, एक वो अभी जो previous participant ने एक सवाल पूछा था आपसे, the branded formulation business में, जिसमें आपने answer दिया था कि यहाँ पे हम हमारा strength है, वहाँ पे थोड़ा problem था. लास्ट ईयर तो उसका रीजन सिर्फ सीजन था या कुछ और था आपके हिसाब से?
नहीं नहीं, इसका रीजन ये है, सपोज हमारा गुजरात स्ट्रॉन्ग है बराबर, तो लास्ट ईयर वो कंटिन्यूअस बारिश गुजरात में ज्यादा इफेक्ट किया अगस्त एंड और सितंबर में, तो उसमें इतना फार्मर लेवल पे कंजप्शन हो नहीं पाया, तो गुजरात में हमारा जो ग्रोथ स्टोरी था वो डाउन रहा, मेनली गुजरात और सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ एमपी. तो जहां हमारा ओल्ड अच्छा था मतलब स्ट्रेंथ था, हमारा वॉल्यूम अच्छा था, बिजनेस अच्छा था, वहां हमें सेटबैक मिला, इसलिए बाकी जो रिमेनिंग स्टेट है वहां सबसे हमें ग्रोथ मिला है, पर यहां हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा था.
तो अगर ये साल ठीक, अगर सीजन ठीक जाए तो मतलब ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में अच्छी ग्रोथ आ सकती है क्योंकि बेस कम है.
बिल्कुल,
ठीक है सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.
ओके, थैंक यू.
थैंक यू. टू आस्क क्वेश्चंस यू मे एंटर स्टार एंड वन. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, we will end the call now. On behalf of Dharmaj Crop Guard Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.
Thank you.